विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आज। साथियों नमस्कार, आप सुन रहे मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुरकर। आज हमारे साथ विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर आपसे रूबरू होने के लिए विशेष आमंत्रित है अधिवक्ता विनोद धंगा जी। नमस्कार सर जी।
नमस्कार सर।
सर जी, जैसा कि आज विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है और हम आपसे जानना चाहते हैं कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या कारण है?
देखिए पादुरकर जी, ये जो कानून बना हुआ है बाल श्रम कानून, तो बाल श्रम कानून में जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनसे किसी भी प्रकार का किसी भी संस्थान में अगर श्रम करवाया जाता है तो वो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। और ये जो कानून है उसमें प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है, ये मूल अधिकार है के तहत आर्टिकल 24 के तहत भारत में बाल श्रम के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। बाल श्रम के अंतर्गत जो एक दायरा है जिसको आप शिक्षा से जोड़ सकते हैं, जिसको आप गरीबी से जोड़ सकते हैं, और ऐसी व्यवस्था जिसमें कम श्रम में जो भुगतान होता है उसमें अधिक समय तक काम करने के लिए बालकों का सहारा लिया जाता है, और इसी की रोकथाम के लिए इस कानून की जो कानून निर्मित किया गया है कि किस तरीके से बालकों द्वारा किए जाने वाले श्रम के ऊपर रोक लगाई जाए। 2016 में इसमें संशोधन किया गया और 2016 के संशोधन के तहत इस कानून के तहत अगर कोई भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों के से अगर काम करवाता है तो उसे उस कानून के तहत में दंडित किया जा सकता है, उस कानून के तहत उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है और 50,000 रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। जी पातुरकर जी।
सर जी, जैसा कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 की थीम जो रखी गई है वो थीम रखी गई है सभी के लिए सामाजिक न्याय और बाल श्रम का खात्मा, इस संबंध में आप मोबाइल वाणी के श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे?
देखिए, सामाजिक न्याय की जो बात है और बाल श्रम का के खात्मे की जो बात है इसमें सामाजिक जो विषमता है, सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए बाल श्रम का खात्मा होना अनिवार्य है। जब तक हम बाल श्रम का खात्मा नहीं करेंगे तब तक हम सामाजिक न्याय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये एक विषमता है, ये विषमतावादी व्यवस्था है, और इसके लिए जो प्रावधान है जैसे मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 24 में जैसे मैंने आपको बताया कि सुरक्षा का, बच्चों की सुरक्षा का प्रावधान है, उसके साथ साथ भारतीय संविधान के 23 में बाल तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऑलरेडी प्रावधान है, उसके बाद अनुच्छेद 21 ए के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो जब तक ये चीजें अमल में नहीं आएगी तब तक सामाजिक न्याय को प्राप्त नहीं किया जा सकता और बाल श्रम को समाप्त नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार ना हो इसके लिए उपाय किए जाए, और अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 भी यही कहता है कि इसके लिए कानून बनाने की शक्ति सरकार को प्रदान करता है। तो मेरा कहना है या मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि बाल श्रम का खात्मा कानून को अमल करने से हो सकता है, और जिससे कि सामाजिक न्याय की जो प्राप्ति है या जिस सामाजिक न्याय की विषमतावादी व्यवस्था की हम बात करते हैं उसको भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उसके ऊपर अमल करने की आवश्यकता है। जी पात्र।
सर जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे चूंकि आप वकालत करते हो और संसद सिविल कोर्ट में भी आपका कार्य चल रहा है, तो आपके समक्ष ऐसा कोई प्रकरण आया हो जो बाल श्रम से संबंधित हो और उसका निराकरण आपने किया हो तो वह भी हम आज मोबाइल वाणी के माध्यम से आपके अनुभव साझा करना चाहेंगे।
जी पातुरकर जी, एक्चुअली क्या होता यह है कि श्रम विभाग की जिम्मेदारी होती है कि कहाँ पर जो कार्य चल रहे होते हैं, श्रम विभाग इसकी मॉनिटरिंग करता है, श्रम विभाग इसकी जांच करता है, और अगर श्रम विभाग ये पाता है कि कहीं कम उम्र का बच्चा, 14 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कहीं किसी संस्थान में, किसी कंपनी में, या कोई ऐसे उत्पाद जहां पर नशीले पदार्थ हो या विस्फोटक पदार्थ हो, वहां अगर काम करता है, तो उसके ऊपर सबसे पहले श्रम विभाग इसकी इसके ऊपर एक्शन लेता है। और ये जितने भी चीजें हैं जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत आते हैं ये, और इसका जो न्यायालय होता है वो हमारे छिंदवाड़ा में संस्थित है, हमारे जिले का जो न्यायालय है। और उसके जहां तक मेरी बात है, तो मेरे पास ऐसा बाल श्रम से संबंधित कोई मामला अभी सौसर न्यायालय में आया नहीं, क्योंकि ये क्षेत्राधिकार के बाहर अपना जो न्यायालय है।
जी सर, जैसा कि आपने कहा है कि इसका कार्य क्षेत्र छिंदवाड़ा है, श्रम विभाग का अलग से न्यायालय होता है, हम आपसे ये जानना चाहते थे इस प्रश्न के माध्यम से, क्योंकि सौसर में अधिक कंपनियां स्थापित है, यहाँ पर ईट भट्टे और होटलों में भी अधिकतर मजदूर काम करते, तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रकरण आपके नॉलेज में आया क्या?
प्रकरण देखिए, श्रम विभाग जब कार्यवाही करता है या उस जांच करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी को हिदायत देके छोड़ दिया जाता है, ऐसा प्रकरण एक दो प्रकरण मेरे नॉलेज में आए थे। संचालकों को से कहा गया कि इस तरीके का काम आप न करवाए किसी से, वो सिर्फ नॉलेज में आए, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया कि उसके ऊपर क्या रिएक्शन हुआ, इसके बारे में तो अपन नहीं कह सकते, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वाली चीजें हो जाती है, लीगल चीजें कहलाती है। लेकिन कई बार हिदायत दे दी जाती है, उनके ऊपर फाइन लगाया जाता है, तो फाइन का जो दायरा है वो विभाग तय करता है, विभाग बोलता है कि ये कार्यवाही आपके ऊपर करेंगे। और उसमें और भी बता दूं मैं आपको, जैसे ये होता यह है कि दोबारा अगर इस तरीके का कोई काम करता है, पहली बार अगर किसी को ऐसा मान लिया गया कि आपने किसी बालक से श्रम करवाया है और उसके ऊपर अगर कोई कार्यवाही हुई, और दूसरी बार अगर कोई ऐसा करता है, तो उसमें अपराध की श्रेणी बढ़ जाती है। जैसे 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान उसको उसमें है, मेरे सामने तो ऐसी कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई।
सर जी, हम आपसे आज इस अवसर पर यह भी जानना चाहेंगे कि कानून तो बन गए है, मगर इस कानून का पालन करने के लिए बच्चों के पालकों की कितनी भूमिका होगी, होनी चाहिए?
देखिए, इसी के लिए मैंने कहा था आपको, इससे बताया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की गारंटी देता है। अब इसमें पालकों की जिम्मेदारी यह है कि इसका अपवाद है, एक अपवाद यह है कि अगर कोई व्यवसाय किसी के माता पिता का व्यवसाय है, कोई दुकान हो, कोई होटल हो, कोई बेकरी हो, और उसमें अगर कोई बच्चे का मतलब कुछ छोटा मोटा श्रम करते, छुट्टियों में श्रम करते हैं, तो उसको इस दायरे से बाहर रखा गया है। अब उसमें पालकों की जिम्मेदारी यह है कि सबसे पहले हमारे बच्चों के अंदर वो चीजें लाना चाहिए कि सबसे आपकी जो अनिवार्यता है उसको आप पूरा करो, उसके बाद आप अपना काम करो। ये पालकों की जिम्मेदारी है, और पालकों ने सबसे पहले अपने अधिकारों को समझना चाहिए, और अधिकारों को समझने के साथ साथ बच्चों को एक फ्रीडम देना चाहिए, बच्चों को श्रम की तरफ ना मोड़ते हुए एक शिक्षा की तरफ आप कह सकते हैं, या किसी अच्छी जगह आप उसको मोल्ड करना चाहिए। किंतु हमारा जो देश है वो इन परिस्थितियों से गुजरता है, शिक्षा के अभाव में लोग अशिक्षित नहीं है, माता पिता पालकगण अशिक्षित नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार ऐसा देखा जाता है कि बालकों को, छोटे छोटे बालकों को काम पर लगा दिया जाता है। तो इसमें तो मैं कहूंगा कि शिक्षा का अभाव है, और अब कानून संबंधी जब शिक्षा का अभाव होगा तो अपने कानून को नहीं समझ पाएगा, और कानून को नहीं समझ पाएगा तो उस पर अमल नहीं कर पाएगा, ये चीजें आती है सामने।
सर, हम आपसे आज इस अवसर पर ये भी जानना चाहेंगे कि अधिकतर पंचायतों में मनरेगा का काम होता है, और कुछ नाबालिग बच्चे जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता, तो माता पिता अपने बच्चों को साथ में लेकर मनरेगा के काम पर जाती है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या पंचायत ने क्या व्यवस्था रखी है, और मनरेगा के तहत कौन सी व्यवस्था रखी गई है इनके लिए?
देखिए, जो माता पिता मनरेगा के काम पर जाते हैं और छोटे बच्चों को अपने साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश करने वाला कोई नहीं होता, तो उसके लिए जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जैसे एक उपाय बच्चों की देखरेख के लिए कोई एक व्यवस्था की जाए, जहाँ पर जैसे बालवाड़ी, अभी बालवाड़ी जैसे स्कूल अगर बात बता दें तो बालवाड़ी में एक अपना प्रक्रम चलता है, बालवाड़ी में बच्चों को रख दिया जाता है, लेकिन बालवाड़ी में 2-3 घंटे के लिए होते हैं। उसके साथ साथ काम करने वाले माता पिता के साथ में अगर कोई बच्चा जा रहा हो तो उसकी देखरेख के लिए भी प्रावधान होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी कहलाएगी।
जैसा कि सर अभी हम अपने संसद क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ कई सारे ईंट भट्टे हैं और ईंट भट्टों पर काम करने के लिए अन्य जिले, समीपस्थ जिले बालाघाट, गोंदिया, यानी अन्य जिलों से मजदूर आते, वो अपने बच्चों को साथ में लेकर आते और यहाँ 4-4, 5-5 महीने रहते, तो उनके बच्चे भी वहीं पर रहते, तो इनके लिए क्या शासन व्यवस्था करनी चाहिए बालकों के लिए?
हाँ देखिए, ये सबसे बड़ी दुविधा ये है कि रोजगार के अभाव में अपना क्षेत्र छोड़कर जो लोग अपने रोजी रोटी के लिए, अपने पेट पालने के लिए बाहर आते हैं, तो स्वाभाविक है कि अपने परिवार के साथ में बच्चे भी आएंगे। अब ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सरकार का एक दायित्व है कि उन लोगों को जिनको रोजगार की आवश्यकता है, अगर रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए तो उनको अपने क्षेत्र से निकलने की नौबत ही ना पड़े, कहीं बाहर जाने की नौबत ना पड़े। इतनी व्यवस्था अगर सरकार कर देती है तो वो अपने स्थान में रह के, अपने जगह पर रहकर अपना भी भरण, अपना पालन पोषण कर सकते, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते और अपना, अपने आय आमदनी को वहां पर बढ़ा सकते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हर क्षेत्र को उसको दायरे में रखते हुए वहां रोजगार उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि आसपास के जो लोग, रहने वाले लोग हैं, उनको भटकना ना पड़े किसी रूप से।
सर हम आपसे एक अंतिम प्रश्न जानना चाहेंगे, क्योंकि आज विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जा रहा है और अधिकतर देखने में आता है कि कई महिला पुरुष रोजगार के लिए बाहर आते हैं और कुछ लोग भिक्षावृत्ति, यानी वो अपना व्यवसाय तो करते ही लेकिन बच्चों से गांव में भोजन मंगवाते हैं, भिक्षावृत्ति करवाते हैं, ऐसे भी बच्चे देखने में मिलते हैं और शायद आपने भी देखा होगा ये इस तरह के प्रकरण अपने आप हो जाते हैं, तो इसको लेकर ग्राम पंचायतों की क्या भूमिका बनती है?
सबसे पहले तो ग्राम पंचायतों ने ऐसे लोगों पर जो बच्चों से इस तरीके की भिक्षा मंगवाने का काम करते हैं, एक रजिस्टर रोस्टर मेंटेन करना चाहिए, ऐसे बच्चों की जानकारी ऊपर प्रशासन, शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए और उनसे मांग करना चाहिए कि इन बच्चों की व्यवस्था के लिए कोई ना कोई उपाय खोजा जाए, क्योंकि ये जो प्रवृत्ति है, ये जो माता पिता की जिम्मेदारी है, लेकिन आपको बताया हम शिक्षा के अभाव में जो माता पिता है खुद तो कुछ नहीं करते, उसके साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी का भी जो है भविष्य बर्बाद करने का काम करते हैं। तो पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि पंचायत उस ऐसे लोगों का एक डेटा मेंटेन करे और डेटा मेंटेन करने के बाद में रिपोर्ट करे ऊपर। इसके लिए जो चाइल्ड केयर पॉलिसीज बनती है, चाइल्ड केयर पॉलिसीज तक ये इस तरीके की शिकायतें पहुंचाए, जिससे कि इसमें काम करने वाले जो एनजीओ है, जो संस्था है, इसके ऊपर काम करे और उन बच्चों के अधिकारों की बात करे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि आज विश्व बाल श्रम दिवस भी था और इस महत्वपूर्ण दिवस पर अपनी महत्वपूर्ण राय साझा की, इसके लिए आपका मुबारक बहुत बहुत धन्यवाद करता है
जी। नमस्कार।